Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taaza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadte utarte graph par. Doston, aapko maloom hai din shanivar ka hai aur aaj ka din aapke liye hi to hota hai. आप चाहें तो शेयर मार्केट से संबंधित, अर्थ जगत से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. आप ही के लिए तीन टेलीफोन लाइन्स हमने खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050, 2331-4464. तीनों नंबर दिल्ली के. 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन. राजीव, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में.
नमस्कार.
नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश.
Prime Minister Narendra Modi reaches China to attend the SCO summit after concluding a productive two-day visit to Japan. Industry bodies, economists and experts hail India's faster-than-expected GDP growth in June quarter. And US federal court rules most Trump tariffs illegal.
जापान की दो दिवसीय सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे. पहली तिमाही के लिए आए उम्मीद से बेहतर जीडीपी आंकड़ों का अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों और औद्योगिक संगठनों ने स्वागत किया. और अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने अधिकांश ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया.
And we begin with the first headline story. Prime Minister Narendra Modi today reached Tianjin in China to participate in the 25th summit of the Shanghai Cooperation Organization that is starting tomorrow. PM Modi, along with other leaders, will deliberate on issues such as regional security, connectivity, sustainable development and global cooperation. The summit will also adopt a 10-year development strategy. Earlier during the day, PM Modi concluded his productive two-day visit to Japan. After attending the 15th India-Japan annual summit on the first day, PM Modi met with the governors of 16 prefectures in Tokyo today. PM highlighted the potential of the state's prefectures' collaboration and urged action under the State Prefecture Partnership Initiative. The PM urged the governors and Indian state governments to leverage the new initiative and forge partnerships in the fields of manufacturing, technology, innovation, mobility, next-generation infrastructure, startups and SMEs. In a major diplomatic and economic breakthrough, PM Modi and his Japanese counterpart, PM Shigeru Ishiba, unveiled a bold strategic blueprint to redefine India-Japan ties over the next decade, with far-reaching agreements across key sectors. At the heart of the outcomes was the India-Japan Joint Vision for the next decade, a 10-year strategic framework identifying 8 priority areas: economic partnership, economic security, mobility, ecological sustainability, technology and innovation, health, people-to-people links, and state-prefecture engagements. Among the most notable economic announcements was Japan's commitment of 10 trillion yen in private investments in India over the next decade. The two sides also launched a comprehensive economic security initiative with a fact sheet listing cooperation in semiconductors, clean energy, telecom, pharmaceuticals, critical minerals and emerging technologies.
Is par charcha zarur karenge, lekin kyunki pehle callers hamare sath jud gaye hain, hamare mehman hote hain aaj ke, wo Keshav sabse pehle caller hain Delhi se. Keshav ji, bahut bahut swagat aapka, kya sawal hai?
Hello, namaskar sir, sabhi ko bahut bahut dhanyawad. Main ye खबर पूछना चाहता हूँ कि सर, कि पहला जो प्राइवेट बैंक जो होते हैं उसमें एफडी हमारी कितनी सपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि एक साल की एफ डी अगर हम उसमें कराते हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों में तो काफी हद तक इंटरेस्ट कम हो गया है। दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे पास ये कॉल आती है प्राइवेट कि आप मार्केट में शेयर में ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते, उनसे हम बात करें ना करें, ये अगर जानकारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम शेयर मार्केट और एफडी में ना जाके अगर गोल्ड के बिस्किट खरीद लें तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा एक साल
जी, जी 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 राजीव जी, इन्होंने कई सवाल एक साथ पूछे हैं, जितना याद रहेगा जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहली चीज इन्होंने पूछी एफडी के बारे में, तो देखिए बैंकों को आप अलग अलग श्रेणी के बैंकों को आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। पहली चीज ये कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनमें प्राइवेट और पब्लिक यानी निजी बैंक और सरकारी बैंक ये दोनों ही जो कमर्शियल बैंक व्यावसायिक बैंक की श्रेणी में आते हैं, वहां पर आमतौर पर आप निश्चिंत रह सकते हैं। कभी कभार कुछ बैंकों को लेकर के कभी कोई खबर आ सकती है कि वहां थोड़ी दिक्कत है, जैसे उदाहरण के लिए मैं गिन सकता हूं यस बैंक, लेकिन उस बैंक को फिर बाद में संभाला गया और एक कंसोर्शियम बना जिसका नेतृत्व एसबीआई ने किया और फिर यस बैंक आज की स्थिति में वापस मजबूत स्थिति में लौटा है, वहां पर निवेशकों का कोई नुकसान नहीं होने दिया गया। तो चाहे निजी हो या सरकारी हो, सरकारी हो तो वहां पर तो कोई आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो कमर्शियल बैंकों की श्रेणी जो है वहां पर आप सामान्यतः निश्चिंत रह सकते हैं। और दूसरी श्रेणी होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा आपको ब्याज देते हैं लेकिन उसके साथ ही आपको थोड़ा सा वहां जोखिम अधिक मान करके चलना पड़ेगा। हालांकि एफडी है तो वादा वही है कि आपको जो भी तय समय के बाद पूरा पैसा वापस मिलेगा ब्याज समेत, लेकिन
कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां प्री मैच्योर विड्रॉल जहां करने की स्थिति होती है उसमें थोड़ा जरूरत से ज्यादा।
उसके बाद अगली श्रेणी है कोऑपरेटिव बैंक की, ग्रामीण बैंकों की। वहां पर कई बार खबरें सुनने को मिलती हैं कि कोई बैंक जो है वहां पर मोरेटोरियम लग गया आरबीआई की तरफ से और पैसा कुछ समय के लिए निकालना अटक गया। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं, उनमें आप ध्यान रखें। आमतौर पर आप अगर कमर्शियल बैंक्स के साथ रहते हैं तो ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा।
इनके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, हम करें कि नहीं। मार्केट मंत्रा के इस मंच से हम हमेशा कहते हैं कि आप निवेशक बने, ट्रेडर न बने, क्योंकि जो ट्रेड करने में घुसाते हैं आज खरीदा वो अक्सर नुकसान के ये होते हैं। तो हम यहां से हमेशा यही सलाह देते हैं कि अच्छे फंड का चुनाव कर सकते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट को आप देख सकते हैं, कंपनी की प्रोफाइल देख कर जाएं, और ट्रेड करने से हमारी सलाह ये होती है कि बचना चाहिए, क्योंकि ये मंच ट्रेडिंग के लिए नहीं, हम उस तरीके से सलाह देते हैं। तो उस तरीके से जो भी कॉल्स आते हैं उसमें ज्यादातर ट्रेड के लिए होते हैं, और अपना अनुभव ये कहता है कि कोई भी आपको आज के स्थिति में मुफ्त की सलाह नहीं देता, इसलिए ऐसे कॉल से बचना चाहिए।
And our next caller is from Kolkata. Mr. Mukherjee, welcome to the show. Please ask your question.
Hello.
Ji, Mr. Hello. Mukherjee, swagat hai. Apna sawal poochhe. Haan,
haan, sir. Boli, ami Bangla bolbo. Asubhidhi nahi
to. Achha, aap pooch le Bangla mein sawal. Hum uska jawab Hindi ya English mein denge. Lekin aap brief mein. Bahut chota poochhe.
Ami Bangla bolchi, sir. Kono mutual fund hai. Kono ki last of the amar 15 bochor hoye geche.
जी ठीक है, ये म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हम निवेश कर सकते हैं, कौन सा बेहतर हो सकता है।
देखिए 40 से अधिक म्यूचुअल फंड घराने हैं, फंड हाउसेज हैं, आप उनमें से कैसे चुनाव करें वो आप थोड़ा सा एक यहां पर किसी खास फंड हाउस का नाम बताया नहीं जा सकता इस प्लेटफॉर्म पे, आपको ब्रांडिंग के हिसाब से कौन सा फंड अधिक सक्रिय है, किसकी अधिक प्रतिष्ठा है, उन सब के हिसाब से आप फंड हाउसेज के बीच में चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी चूंकि बहुत सीमित है तो मैं एक सलाह अपनी ओर से दूंगा कि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने जा रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड वहां से शुरुआत करें, आप सेंसेक्स या निफ्टी का इंडेक्स फंड लें, उसमें एसआईपी शुरू करें इस तरीके से, और ये एसआईपी इंडेक्स फंड की आप सेंसेक्स या निफ्टी की करेंगे तो वहां पर फंड हाउस चुनने को लेकर के आप बहुत गलत नहीं होंगे, चाहे आप जो भी नाम चुन ले,
लेकिन थोड़ा सा टेन्योर अपना जरूर रखिएगा 3 से 5 साल का।
एसआईपी करिए और सिर्फ 3 साल 5 साल नहीं, आप 7 साल 10 साल 15 साल, जब तक आप मतलब एक तरह से कामकाजी जीवन है, जब तक आपकी कमाई रहती है, सक्रिय रूप से आप कमा रहे हैं तब तक आपको चलाते रहना चाहिए। अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप समय समय पे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन
जी
आमतौर पर निवेश तब तक करें जब तक आप कमा रहे हैं,
और यही सलाह है, क्योंकि जब आप किसी में SIP करते हैं किसी फंड में, तो सिर्फ आप पैसे का निवेश नहीं करते, पैसे के निवेश के साथ साथ आपको समय का भी निवेश करना बहुत जरूरी है। जितना लंबा टेन्योर होगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। राजीव, जिस बात की अभी हम चर्चा कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में SIP के लिए समय भी निवेश करना बहुत जरूरी है, और NPS भी एक ऐसा ही टूल है जिसमें आप एक लंबे समय तक निवेश करते हैं और एक बड़ा कॉर्पस आप रिटायरमेंट के समय तक लेते हैं। अमित हमारे अगले कॉलर होंगे दिल्ली से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें।
सर, सभी को नमस्कार।
नमस्कार।
मेरा प्रश्न सर से, राजीव जनन सर से ये है कि जो हमारा व्यापार घाटा है US के साथ में, वो कितना है? भारत में बने सीम और सेमी कंडक्टर कब तक बाजार में आ जाएंगे? और जो हम कैलिफोर्निया से आलमंड आयात करते हैं और वाशिंगटन का सेब आयात करते हैं, क्या हम इसको कम नहीं कर सकते हैं? धन्यवाद।
अमित को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि US का व्यापार घाटा भारत का नहीं है।
की सबसे बड़ी तकलीफ भारत से और खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से यही है कि भारत ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका के साथ। कुछ गिने चुने ऐसे बड़े देशों में अमेरिका है जिसके साथ भारत ट्रेड सरप्लस में है, यानी हम उनको निर्यात ज्यादा करते हैं, उनसे सामान कम मंगाते हैं। और अमित जी को कैलिफोर्निया के बादाम और सेब इन सब की याद है, लेकिन असल में इनका आयात उतना बड़ा नहीं है भारत का। हम उनसे काफी बड़े स्तर पे हथियारों का आयात करते हैं, तेल का आयात उनसे हो रहा है, वो सब बड़े आइटम हैं, उन सब की मात्रा ज्यादा बड़ी है अगर हम कीमत के हिसाब से देखें तो। अब देखते हैं ट्रेड।
बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि कई और लोगों को भी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसमें भारत फायदे में है, ट्रेड सरप्लस में है, और अमेरिका व्यापार घाटे में है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, यही एक बहुत बड़ी समस्या थी अमेरिकी प्रशासन के साथ, जिसको लेकर टैरिफ बढ़ाया गया, और उस टैरिफ से भी हम लोग बहुत डटकर मुकाबला कर रहे हैं, और GDP के हमारे नंबर्स जो हैं उसको एक तरीके से कितनी रेजिलियंस है हमारी इकोनॉमी में।
ट्रंप साहब ने कहा डेड इकोनॉमी, अभी उनको GDP के आंकड़ों से सबसे बड़ा जवाब मिल गया होगा कि भारत की इकोनॉमी कहां किस मोर्चे पर कितनी मजबूत है।
महाराष्ट्र चलते हैं, राजीव, कोल्हापुर, रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर, सवाल पूछ लें।
हेलो
जी,
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
हाँ, मेरा सवाल है कि लास्ट वीक में मार्केट वैसी बहुत गिरी है, वो टेरिफ की वजह से रहेगा मालूम नहीं, लेकिन ऐसी हालत में जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने कौन से सेक्टर से बाहर निकलना चाहिए और कौन से सेक्टर में बने रहना चाहिए, और आगामी नेक्स्ट वीक में मार्केट बढ़ सकता है क्या, और भी नीचे जाएगा? थैंक यू
जी। रत्नाकर जी, GDP के जो आंकड़े आए हैं उनके चलते नए सप्ताह की शुरुआत तो अच्छे उत्साह के साथ होनी चाहिए, वो उत्साह कितना लंबा टिकेगा ये एक जरूर प्रश्न रहेगा, और हमारे लिए भी ये देखने की बात है। कई बार ये होता है कि बाजार की प्रतिक्रिया किसी अच्छी खबर पे कितनी अच्छी रहती है या किसी बुरी खबर पे कितनी बुरी रहती है, उससे हमें बाजार के मूड का पता चलता है। तो GDP के आंकड़ों पर बाजार में कितना उत्साह बनेगा वो हमें नए सप्ताह में देखने को मिलेगा। यदि बाजार इन्हीं स्तरों से पलट जाता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन चूंकि अनिश्चितताएं काफी हैं और GDP के आंकड़े जो हैं उनको भी हम अगर समझें तो उसमें कई सारी चीजें एक बार की हैं, उसमें बेस इफेक्ट का असर है, सिर्फ पहली तिमाही के दौरान कुछ डेवलपमेंट्स रहे, जैसे निर्यात में अमेरिका में स्टॉकिंग की गई भारतीय सामानों की, भारत से भेजे हुए सामानों की, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो, ऐसा नहीं है कि पहली तिमाही में अगर 7.8% का आंकड़ा आ गया तो अगली दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही के भी आंकड़े वैसे ही आएंगे, वो कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि दूसरी तिमाही भी अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन आप ये सोचें कि अभी यही आंकड़ा हर तिमाही में आएगा वो भी नहीं होगा। तो बाजार अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में ज़रूर रहेगा। यहाँ हमें नए हफ्ते की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखेगी, वो अच्छी शुरुआत कितनी टिकेगी, कितनी दूर तक जाएगी, ये अभी नज़र रखने वाली बात है।
टिंकू जी बिहार से हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका टिंकू, सवाल पूछ ले। हेलो।
हेलो, नमस्ते सर।
नमस्ते टिंकू जी, पूछ ले सवाल।
सर मेरा दो सवाल है, मैंने कि MPS अकाउंट जो है कितने का उम्र वाले है, 42-47 वाले है, और कितने का कम से कम सालाना जमा करना पड़ेगा पेंशन योजना, और एक सहारा का एफडी है, पैसा मिलेगा या ना मिलेगा सर, यही दो सवाल हमें।
ठीक है, एनपीएस पर जानकारी दें राजीव
जी। देखिए एनपीएस अच्छी चीज है, वहां पर आपको पैसे लगाने के लिए अभी भी अगर आप 40 42 45 के बीच में हैं तो बहुत देर नहीं हुई है, थोड़ी देर हुई है। आमतौर पे अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए 25-30 के बीच में शुरुआत कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है और यहाँ से भी आप आराम से 15-20 साल तक तो इसमें आप निवेशित रहेंगे, लगातार योगदान करेंगे, तो इतने समय में आपके लिए रिटायरमेंट के लिए ठीक ठाक पैसा जमा हो सकता है। तो ज़रूर आप इस पर विचार करें, और अलग अलग इसकी स्कीमें होती हैं, उसमें कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, आपको उन ऑप्शंस को आप ठीक से ध्यान दे करके चुनिएगा कि आपको इक्विटी यानी शेयर बाजार वाला निवेश ज़्यादा चाहिए, आपको डेट वाला हिस्सा जिसमें आपको बंधा बंधाया पैसा ज़रूर मिलता है, प्रॉमिस्ड पैसा होता है, वो मिलना चाहिए, वो ऑप्शंस आप थोड़ा सा एक मिला जुला ऑप्शन अगर आप रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
And from Bihar, let's go to Ghaziabad, from where we have our next caller. Gaurav is joining us. Gaurav, welcome to the show. Please ask your question.
Namaste, Market Mantra team. So, in wake of these from America, how it will affect our dollar earning and dollar reserve? Will it affect our balance of payment? And see, Parvesh, sir, kya retail investor ko, jaise hum log hain, we should be keep investing because तो ये बादल छट जाएंगे, इज इट द राइट टाइम टू कीप इन्वेस्टिंग एवरी टाइम बिकॉज मार्केट इज स्टक एट 80,000 काफी टाइम से, तो दिस इज बेसिकली टाइम टू रिकूप एंड इट विल गो बियॉन्ड 100,000 से आफ्टर नेगोशिएशंस आर ओवर, बिकॉज एफआईआईज आर विथड्रॉइंग, दैट इज द रीजन टू डे आई कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। क्या वजह है, क्या व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ऑल दिस
जी? देखिए गौरव जी, बहुत सारी चीजें मिले जुले तरीके से काम करती हैं बाजार में, कोई एक फैक्टर वही सारा असर लेकर के आता है ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे आप देखें तो बाजार का गिरना अभी ट्रंप टैरिफ के बाद से या नवंबर में वहां डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए राष्ट्रपति चुनाव में, उसके बाद से नहीं है, हमारे बाजार ने पिछले साल सितंबर से ही गिरना शुरू कर दिया था। तो वहां पर कहीं बाजार को अर्निंग्स को लेकर के चिंताएं थी, वैल्यूएशंस को लेकर के चिंताएं थी, तो उसकी वजह से बाजार में कहीं हमने एक टॉप बनाया और उसके बाद बाजार करेक्शन के मोड में रहा। दूसरी तरफ भारतीय बाजार से पैसा क्यों निकल रहा था और अभी भी निकल रहा है, उसके कारण भी बदलते रहे हैं। जैसे बीच में अगर कुछ विदेशी निवेशकों को लगा कि नहीं, भारत से ज़्यादा सस्ता बाजार चीन हो गया है, चीन बीच में काफ़ी वहाँ शेयर बाजार गिर गया था, और जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक होते हैं वो अलग अलग बाजारों के बीच में देखते रहते हैं कि कहाँ बेहतर मौके मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार को लेकर के कोई ऐसी लंबे समय की चुनौती नहीं है या चिंता नहीं है कि आप निवेशित रहने या न रहने का फैसला करें। इस समय बाजार में जैसा कई बार कहा जाता है कि निवेशित नहीं रहना ही सबसे बड़ा जोखिम होगा, तो आप पैसे लगाते रहें समय समय पर, जो आपकी बचत है उसका एक अच्छा हिस्सा इक्विटी में जाना चाहिए। काफ़ी कुछ वो डिपेंड करता है आपका एसेट एलोकेशन कैसा है, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कैसी है, लेकिन एक थंब रूल ये मान के चलिए कि अगर आपके पास पर्याप्त समय है आगे तो आप इक्विटी में अपनी बचत का एक अच्छा हिस्सा नियमित रूप से, नियमित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप निवेशित रहें और निवेश करते रहें।
बिल्कुल। के शुक्ला अगले कॉलर हैं, महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए। शुक्ला जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है?
जी नमस्कार।
नमस्कार।
मेरा क्वेश्चन यह था कि जो कमोडिटी मार्केट है उसमें जो डेरिवेटिव पे ही टोटल सुना हूं मैं कि ट्रेड होता है, तो क्या वो कैश मार्केट की तरह जो उसका वैल्यू रहता है महीने के लास्ट में जीरो हो जाता है, ऐसा है क्या? और सेकंड हाँ यही क्वेश्चन जरा।
जी जी जी, पहले तो डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहने की ही सलाह हम लोग देते हैं।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमोडिटी में सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेड ही होता है
जी,
आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी विकल्प रहता है, लेकिन वो उनके लिए है जिन्हें सही में, मान लीजिए आप 1,000 बोरी गेहूं की खरीदेंगे तो फिर आपको अपने पास लेकर के रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव मार्केट में वो चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर आप जैसे कैश सेटलमेंट होता है तो जो भी अंत में जो भी सीरीज होती है, हर सीरीज के अंत में वहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है, यानी अगर आपके फायदे में ट्रेड गया है तो आपको पैसा मिल जाता है, और अगर आपके नुकसान में गया है तो फिर आपके
बिल्कुल
जो भी पैसे आपने प्रीमियम के तौर पे दिए थे वो चले गए।
प्रीतम और योगेश जुड़े हुए हैं, उन तक जाने से पहले हम बता दें कि बेहतरीन जीडीपी के आंकड़े आए हैं पहली तिमाही के लिए, 7.8%। इसको विस्तार से हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी और ये बताना चाहेंगे कि देश भर के उद्योग निकायों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बेहतरीन आंकड़ों का स्वागत किया है। देश की जीडीपी वृद्धि दर पर सभी ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ और महासचिव रंजीत मेहता ने कहा है कि इस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर बेहद मजबूत और लचीली साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद गोयनका ने कहा कि पहली तिमाही के लिए जारी जीडीपी आंकड़े स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और बेहतर होती गति का संकेत देते हैं। जीडीपी के आंकड़ों की सराहना करते हुए आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी लचीलेपन को दर्शाते हैं। भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी कहा है कि अच्छे आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। वहीं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत लगातार सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये क्या इंडस्ट्री कह रही है और जीडीपी के आंकड़े अपने आप में गवाह हैं, हमने इस पे चर्चा भी की, आपने बताया भी कि इसका असर जो है मार्केट पर अगले हफ्ते पड़ सकता है। फिलहाल अब योगेश के पास चलने की बारी है। योगेश जी, जल्दी से सवाल पूछ लें।
बिल्कुल नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मेरे दो सवाल हैं। पहला तो यही है कि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, क्या इसका ये कैसा विरोधाभास है कि जो कंपनियों की तिमाही के नतीजे आ रहे हैं वो मुनाफा नहीं दिखा रहे हैं पर जीडीपी आंकड़े बेहतर आए हैं, तो ये कैसे नापा जाता है? दूसरा सवाल ये है कि मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से क्या अभी ये फेयरली वैल्यूड है, लमसम करने का मौका है, या फिर अभी भी वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच है?
जी देखिए राजीव, क्या कहेंगे आप?
देखिए विरोधाभास जैसी कोई स्थिति नहीं है
जी।
जो हमें कंपनियों के नतीजे भी देखने को मिले हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वहां कोई डी ग्रोथ है। बाजार ने जितनी उम्मीदें की थी उसके मुकाबले कहीं कहीं पे थोड़ी सी उस हद तक उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन जो है वो पूरब जा रही है और दूसरी ट्रेन पश्चिम जा रही है, वैसा मामला कुछ नहीं है कि आप इसे विरोधाभास कहें। और शेयर बाजार में जरूर हमें कई बार लगता है कि अच्छा बाजार जो हमारे इंडेक्स हैं वो एकदम नए रिकॉर्ड पर नहीं पहुँचे हैं, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन इस उतार चढ़ाव के चलते जो आपका वैल्यूएशन वाला सवाल है वो ही एड्रेस होता है। वैल्यूएशन अब उतने स्ट्रेच नहीं है, जो आप मैं अगर तुलना करूं सितंबर 2024 की स्थिति से तो अब उस समय मूल्यांकन थोड़े स्ट्रेच दिखने लगे थे और कुछ खास पॉकेट्स में फ्रॉग या बुलबुले जैसी स्थिति भी कहीं कहीं हल्की दिखी थी। अब उस स्थिति से काफी हद तक हम मूल्यांकन को नॉर्मलाइज्ड होते हुए सामान्य स्तरों पर लौटते हुए देख रहे हैं, तो नियमित रूप से आपको बाजार में निवेश करने के लिए अच्छे मौके लगातार मिलते रहेंगे। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में करें या म्यूचुअल फंड के जरिए करें, नियमित निवेश करते रहें तो आपको इन सब को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और कुछ कंपनियों के नतीजे अगर उतने बेहतर जो कि उम्मीद थी नहीं आए हैं तो उसका जीडीपी पे सीधा आप नहीं मान सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खास करके सर्विसेज सेक्टर ने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अपने श्रोताओं के लाभ के लिए यहां बता दें कि दरअसल कई लोगों के सवाल ये आते हैं कि जीडीपी दरअसल होती क्या है, तो ये बताना चाहेंगे कि किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसमें एक नियत अवधि के अंदर जितने सामान बिकते हैं उनका जो अंतिम मूल्य का योग होता है वही देश की जीडीपी होती है।
सर्विसेज भी
जी, जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड रहता है।
And our next caller is from Delhi. Preetam is calling in. Preetam, welcome to the show. Please ask your question. I guess there is no call from Preetam. There's a technical slag. Till that time, let's go to our next story. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that the nation's GDP growth rate of 7.8% will have a positive impact on its energy consumption, addressing the media in New Delhi. Mr. Puri highlighted that if the economy is doing well, energy consumption will go up. And we have our next caller from Kolkata, D.R. Acharya. Acharya ji, apna sawal poochiye please.
Acharya ji, apna sawal.
Acharya ji, apne radio set ko please zara band kar dijiye.
Sir, main D.R. Acharya, retired assistant general manager, and for small time I was in charge of anti-hygiene cell as a part of the problem. मेरे सवाल है
ये एनपीएस में मैक्सिमम कितना पैसा एक साथ रख सकता?
हाँ, एनपीएस में मैक्सिमम रख कितना सकते हैं? एनपीएस में आपको लगातार हर महीने
जी
लगाना होगा पैसे,
वो कोई लमसम इन्वेस्टमेंट वाली चीज नहीं है। आपको हर महीने अपनी अर्निंग्स, आपकी जितनी भी बचत है उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि आप एनपीएस में कितना पैसा लगाना चाहते हैं हर महीने। जो पैसा आप हर महीने लगा सकते हैं आप उसी हिसाब से कमिटमेंट करें।
बिल्कुल।
And we go over to our next story. A U.S. Federal Appeals Court has struck down several reciprocal tariffs imposed by U.S. President Donald Trump, saying he unlawfully leaned on emergency powers to impose the import taxes. The court observed International Emergency Economic Powers Act does not authorize tariffs like the ones President Trump used the law for earlier this year.
और हम ये बता दें कि हमने चर्चा की कि अगले सप्ताह मार्केट कैसा हो सकता है, लेकिन इस सप्ताह मार्केट कैसा रहा? पूरे सप्ताह का घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह लगभग 2% की गिरावट रही है। सेंसेक्स लगभग 1,500 अंक गिरा, 79,810 पर रहा। निफ्टी में भी 443 अंक की गिरावट रही और यह 24,427 पर रहा। अगस्त महीने में सेंसेक्स में 1.4% की गिरावट रही है, जबकि निफ्टी में 1.4% ही की गिरावट रही है। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप इस सप्ताह 3% गिरा, स्मॉल कैप में भी 3% की ही गिरावट दर्ज की गई। राजीव, आज का हम कहें तो समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। आपने कई विषयों पर चर्चा की, तमाम श्रोताओं का और आपका धन्यवाद।
Namaskar.
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi reaches China to attend the SCO summit after concluding a productive two-day visit to Japan. Industry bodies, economists and experts hail India's faster-than-expected GDP growth in June quarter. And US Federal Court rules most Trump tariffs illegal. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Namaskar.
Namaskar.
Market Mantra.